नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार देश में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार से मांग की। और कटिहार सदर अस्पताल में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली 2 आशा कर्मी गिरफ्तार, 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रम प्रधान क्षेत्रों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने बजट को दूरदर्शी और समावेशी बताते हुए कहा कि अब वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार बनेगा।
इस सदन में जो बजट 2026-27 प्रस्तुत हुआ है वह भारत की आर्थिक सोच, राजनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का बजट है। यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है।
विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आज की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बकाया राशि जारी करने को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि सरकार स्टेट नोडल अकाउंट नहीं बना सकी है, इसके चलते लाभार्थियों की राशि रुकी हुई है।
स्टेट नोडल अकाउंट हम नहीं बना पाए महोदय, जिसके चलते हमारी राशि रुक गई है प्रधानमंत्री आवास में। तो फिर हमने अनुरोध किया है 31 मार्च तक कि हमको नोडल स्टेट नोडल अकाउंट बनाने में समय लग जाएगा, इसलिए हमको जो आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास, उसमें जो लंबित राशि है 31 मार्च के पहले भुगतान करने हेतु आप आवश्यक निर्देश दें हमें, ताकि हम उनके जो आवास में गति धीमी है और जो लंबित है उनको पूरा हम कर सकें।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि जीविका दीदियों को पहचान पत्र निर्गत करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा। भोजनावकाश के बाद सदन में वित्तीय कामकाज हुआ। तृतीय अनुपूरक बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अब दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
हम लोग दिव्यांगजनों को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ने का काम किए हैं और इसमें भी हम लोग 10 लाख की राशि उनको उद्योग लगाने के लिए देंगे और 5 लाख अनुदान के तौर पर और 5 लाख रुपया की राशि उनको 84 किस्त में वापस करना है।
श्री सहनी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रमंडलों में 500 पेट वाले मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय खोले जाएंगे। मंत्री द्वारा राजद और कांग्रेस के शासनकाल में नरसंहार की चर्चा करने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुल 12,165 करोड़ रूपये से अधिक के तृतीय अनुपूरक बजट को स्वीकृत प्रदान की। इसके बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विनियोग विधेयक 2026 पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इधर विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भूमि सुधार जनसंवाद महाभियान में अब तक 46 लाख आवेदन मिले हैं। इसमें 40 लाख में नाम, पता और खाता संबंधित गड़बड़ियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि विवादित मामलों को राजस्व न्यायालय देखेगा, लेकिन जिन मामलों में विभागीय स्तर पर सुधार हो सकता है उसमें कार्रवाई की जा रही है।
जिस दिन 40 लाख लोगों का परिमार्जन कर देंगे तो मात्र 6 लाख आवेदन पर ही हमको आगे की सुनवाई का समाधान करना पड़ेगा। आज इसके परिमार्जन के नहीं होने के कारण महोदय कहीं न कहीं हमारा केंद्र और राज्य की कई योजनाओं से मेरे किसान वंचित रह जाते हैं। 46 लाख आवेदन का हमने जिक्र किया है महोदय, लेकिन इनके प्रश्न जो है उसके हिसाब से 8363 जिसमें 2414 आवेदन का हमने समाधान कर दिया महोदय।
एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी।
अभी तक उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल के सीमा पर 8, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। इसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार संवेदनशील है, हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाएं।
भोजनावकाश के बाद सदन में विभागीय बजट पर चर्चा हुई। इधर आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने विधानमंडल परिसर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आज राज्यसभा में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के विकास से पूर्वी भारत के वैश्विक संपर्क को नई गति मिलेगी।
इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाने से पूरा ट्रेड इकोनॉमी उस क्षेत्र का बदल जाएगा। अतः मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से समन्वय स्थापित कर बिहार सरकार के प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, इस निर्णय से न केवल मिथिला क्षेत्र जो पूरा है, जो पड़ोसी नेपाल क्षेत्र है, संपूर्ण पूर्वी भारत के आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को नई गति मिलेगी।
लोकसभा सचिवालय ने विपक्षी सांसदों के अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में कुछ कमियां पाई हैं। लोकसभा सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस में मौजूद कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई करने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को दलालों से मुक्त करने के अभियान के तहत आज कटिहार में बड़ी कार्रवाई की गई है। कटिहार सदर अस्पताल में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली 10 आशा कर्मियों के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही 2 आशा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर हाजीपुर सदर अस्पताल में सक्रिय 2 दलालों को पुलिस हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 46,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अधियाचना प्राप्त हो गई है। जल्द ही परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार से बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे पत्र में उन्होंने फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। पटना व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया गया, कहीं से कोई विस्फोटक नहीं मिला है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश भाजपा की ओर से पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री रामकृपाल यादव और दिलीप जायसवाल ने दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। पटना के गायघाट इलाके में एसटीएफ और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोलीबारी में अपराधी को पैर में गोली लगी है। कुख्यात राजीव कुमार 25,000 रूपये का इनामी था और उस पर 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। सिवान पुलिस ने एक व्यापारी से 10 लाख रूपये रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने मनियारी थाना के सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी दीपक कुमार को अलग अलग धाराओं में 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान थाना क्षेत्र के महादेवा गांव के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव से पुलिस ने दूसरे के नाम पर बैंक खाता खोलकर 1,37,00,000 रुपए से अधिक की राशि हेरा फेरी करने के आरोपी युवक अनमोल तिवारी को गिरफ्तार किया है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत सुपौल जिले में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। यह अभियान 14 अप्रैल तक संचालित होगा। शेखपुरा में जीविका परियोजना के सौजन्य से आज रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले में रोजगार के लिए 721 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 311 अभ्यर्थियों को अलग अलग कंपनियों ने जॉब ऑफर किया। औरंगाबाद के ओबरा में आज जिला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों के 33 स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुंगेर के पोलो मैदान में आज एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय के खिलाड़ियों ने सहभागिता की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार देश में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार से मांग की। और कटिहार सदर अस्पताल में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली 2 आशा कर्मी गिरफ्तार, 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।